Chutez-vous. Chutez-vous. एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
प्रिय श्रोताओं, मैं डॉक्टर देवव्रत सिरतन क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवत गीता और महात्मा गांधी विरचित सत्य का प्रयोग। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे मध्य में डॉक्टर संयुक्ता भवन जी आई हुई हैं। डॉक्टर संयुक्ता भवन जी के बारे में दो शब्द। डॉक्टर संयुक्ता भवन जी महात्मा गांधी संस्थान में पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत रही। इन दिनों आप ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में सेवारत हैं और हिंदी भाषा की सेवा में लगी हुई है। डॉक्टर संयुक्ता जी, आप स्टूडियो में आई इसके लिए आपको धन्यवाद है। महात्मा गांधी जी विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, वे अपने आप में एक संस्था रहे। उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू हैं। वे राजनीतिज्ञ रहे, दार्शनिक रहे, समाज सुधारक रहे, इसी तरह उनके अनेक पहलू हैं। आज हम महात्मा गांधी और श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बातचीत करेंगे। तो प्रश्न ये है, महात्मा गांधी जी के जीवन में गीता कितनी महत्वपूर्ण रही?
सर्वप्रथम क्षितिज के विधिवत श्रोताओं को हमारा सादर अभिवादन स्वीकार हो। साथ ही साथ हम विश्व हिंदी सचिवालय और MBC के प्रति भी अनुग्रहित हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। यह विश्व का एक ऐसा आधारभूत शास्त्र है जिसके 18 अध्यायों के 700 श्लोकों के गहन अध्ययन तथा इस महत्तम गीता ज्ञान के प्रयोग से श्रेष्ठ व आदर्श जीवन की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद, श्री अरोबिंदो, श्री प्रभुपाद, बाल गंगाधर तिलक, सर्वपाली राधाकृष्णन, एनी बेसेंट तथा पाश्चात्य जगत के ऑनरी डेविड टोरो, अल्बर्ट आइंस्टाइन आदि ने इस गीता ज्ञान की गरिमा को समझकर व्यवहार में लाया। वैसे ही गांधी जी को साधारण मानव से असाधारण महात्मा तक की यात्रा संपन्न करने का श्रेय श्रीमद् भगवत गीता को ही जाता है। गीता ज्ञान गोताखोर के रूप में गांधी जी गीता के महावाक्यों का अनुवाद और व्याख्या गुजराती भाषा में कर चुके हैं। साथ ही गीता के प्रति अपनी अगाध आस्था के परिणाम स्वरूप गीता माता नाम से एक पुस्तक की रचना भी की है, जिससे उनकी वाणी इस रूप में प्रखर हुई है। उस पुस्तक में वे कहते हैं, मेरे लिए गीता माता हो गई है। मुझे जन्म देने वाली माता तो चली गई, पर संकट के समय गीता माता के पास जाना मैं सीख गया हूँ। मैंने देखा है, जो कोई इस माता की शरण में जाता है, उसे ज्ञानामृत से तृप्त कर देती है। तो मुख्य बात है ज्ञान अमृत, अर्थात गीता में ज्ञान की वह अमृत धारा है जिसका रसपान कर हम देखते हैं कि गांधी जी अमर हो गए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पहाड़ जैसा उनका राजनैतिक संघर्ष था, लेकिन उस पहाड़ जैसे संघर्ष को भी राई से रुई बना दिया और इसका श्रेय गीता को जाता है। गांधी जी की मनःस्थिति भी जब अर्जुन की तरह होती थी, अर्थात द्वंद्वग्रस्त असमंजस की होती थी, तो गीता ज्ञान ही उन्हें रोशनी प्रदान करती थी। इसलिए इसके बारे में वे कहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध उनका कथन है कि जब संदेह मुझे घेर लेता, मन में निराशा छा जाती, तब मैं गीता खोलकर किसी भी श्लोक को पढ़ता हूँ तो मन को शांति मिलती है और दुख के बादलों के बीच भी मैं मुस्कुरा उठता हूँ। तो कहते हैं कि जो प्रतिदिन गीता का पाठ करता है और उसको जीवन में लाता है वो सदा प्रसन्न चित रहता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गीता के श्लोकों ने गांधी जी के व्यक्तित्व को तराशा और इस कदर तराशा कि वे पूजनीय हो गए।
तो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा के बारे में आप कुछ बता सकती हैं?
अवश्य, क्योंकि मुख्य विषय ही है भगवद गीता और महात्मा गांधी जी के सत्य का प्रयोग। तो सत्य का प्रयोग वास्तव में गांधी जी की आत्मकथा ही है, जिसे उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती में कलमबद्ध की थी। उन्होंने विश्व की इस सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली आत्मकथा, यह विश्व की सर्वाधिक एक बेस्ट सेलर है, को 29 नवंबर सन 1925 में लिखना आरंभ किया और 3 फरवरी सन 1929 को इसे इतिश्री प्रदान की। इस आत्मकथा के जनकल्याणमय उद्देश्य को संबोधित करते हुए गांधी जी कहते हैं कि मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं उनकी कथा लिखनी है। तो यहाँ महत्व उनकी आत्मकथा की नहीं है, लेकिन सत्य के जो प्रयोग किए थे। तो सत्य के प्रयोग सचमुच गांधी जी के जीवन में मनसा वाचा कर्मणा की जो सत्यता है, व्यवहार विचार संपर्क की जो ईमानदारी है, कर्म क्षेत्र की जो सशक्त सत्य का प्रयोग है, मानो ये सब कुछ उस प्रयोगशाला में निहित है। तो इस प्रकार गांधी जी का पूरा जीवन ही एक प्रयोगशाला रहा, सत्य का प्रयोगशाला, सत्य की प्रयोगशाला। और इसलिए इस सत्य के पुरोधा ने अपना परिचय ही इस सूत्र रूप में अभिव्यक्त किया है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अर्थात जैसी सोच जैसी कथनी वैसी ही करनी को चरितार्थ करने वाले महत्तम व्यक्तित्व हैं गांधी जी का। अपनी इस आत्मकथा में गांधी जी ने अद्भुत ईमानदारी दर्शाई है। कहीं कहीं उन्होंने तो अपनी कमजोरी का भी उल्लेख किया है, उसमें तनिक भी हिचकिचाई नहीं, लेकिन हर ऐसे कर्म के बाद उनका पश्चाताप, उनकी क्षमा याचना या फिर उपवास या मौन व्रत द्वारा उनका प्रायश्चित, ये सभी गांधी जी की सत्यता के प्रति उनकी आढ़ूरता के ही द्योतक है। छोटी सी छोटी बात में भी उनकी सत्यता की झलक मिलती है। तो ये सारा कुछ उनके सत्य के प्रयोग में निहित है।
तो गीता और सत्य का जो प्रयोग है, इसके बीच जो अंतर संबंध है,
अवश्य बहुत सुंदर प्रश्न है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी के लिए विदित हैं कि गांधी जी लगातार गीता का अध्ययन करते थे, वे श्लोकों को कंठस्थ करते थे, यहाँ तक कि कुछ समय के पश्चात गीता के 18 अध्यायों में से 13 अध्याय के श्लोक उन्हें कंठस्थ हो चुके थे। और यहाँ भी कह सकते हैं कि गीता आजीवन उनकी संगीनी भी रही। गांधी जी के दीर्घकालीन सचिव श्री महादेव देसाई जी का कहना है कि गांधी जी के जीवन का संपूर्ण पुरुषार्थ व सचेत प्रयास था गीता की श्रीमत अनुसार जीवन को जीना। कहने का भाव यह है कि गांधी जी ने केवल गीता का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि गीता को जिया। ये उनकी विशेषता है, ये उनकी असाधारणता है। और कुछ ऐसे अनमोल वाक्य हैं, महावाक्य हैं गीता के, जिन्होंने गांधी जी के जीवन में आमूल परिवर्तन लाया है। पहला है गीता द्वारा प्रतिपादित आत्मा का ज्ञान। गीता के द्वितीय अध्याय में स्वयं भगवान अर्जुन के माध्यम से समस्त जीवात्माओं को शक्तिशाली आत्मिक स्वरूप का बोध कराते हैं। गीता में है कि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात हे अर्जुन, तू शरीर नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है। आत्मा अविनाशी और शाश्वत है। आगे उसी अध्याय में कहते हैं भगवान कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापु न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती, न पानी गीला कर सकती है, न वायु सुखा सकता है, अर्थात आत्मा का वध, आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम सभी जानते हैं कि वासान से जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात पांच तत्वों से बना यह शरीर नश्वर है, वैसे ही जैसे पुराने वस्त्र, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस प्रकार गांधी जी ने इन्हीं महावाक्यों को जीवन की धारणा बना ली, इन्हें ही अपने स्वधर्म की नींव बनाई। गांधी जी ने स्वीकार किया कि जब आत्मबोध हुआ तो उसके साथ साथ सत्य के प्रति आग्रह अर्थात सत्याग्रह की शक्ति भी जागृत हुई, क्योंकि सत्यता ही आत्मा का नैसर्गिक निजी गुण है।
महात्मा गांधी जी को महात्मा के रूप में संबोधित किया जाना कहाँ तक सार्थक लगता है?
देखिए, गीता में महात्मा के लिए स्थित प्रज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात स्थिर बुद्धि वाली आत्मा। ऐसी महात्मा के अनेक लक्षण दिए गए हैं, लगभग उसमें 36 गुण बताए गए हैं। उनमें से एक का हम वर्णन कर सकते हैं। कहा गया है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जयव। तो इस प्रकार से आत्मिक स्वरूप में स्थित होने पर, आत्मिक स्वरूप मतलब कि अपने ओरिजिनल निजी स्वरूप नैसर्गिक रूप में जब हम स्थित होते हैं तो आत्मा के 7 गुण हैं। वे हैं शांति, पवित्रता, शक्ति, प्रेम, सत्यता, ज्ञान और आनंद। और उसके जागृत होने से जो सांसारिकता होती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे जो विकार हैं उनसे व्यक्ति निवृत्त हो जाता है और सात्विकता आ जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं इतना राजनैतिक उहापोह होते हुए भी वे सदा मौन व्रत और उपवास का आश्रय लेते थे, मतलब उस आत्मिक शक्ति का प्रयोग करते थे। और उस आत्मिक शक्ति का प्रयोग मतलब सत्य का आग्रह। इसीलिए हम देखते हैं गीता से उन्होंने सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता व समाने की शक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही प्रखर रूप में कहा है सत्यता को। एक उदाहरण देते हैं कि गीता से जो भी सीखा उससे बहुत परिवर्तन आया। कैसा परिवर्तन? एक उदाहरण देते हैं, जैसे शुरू शुरू में वे बहुत भयभीत रहते थे। स्वयं कहते हैं कि उन्हें अंधेरे से डर लगता था, चोर भूत सांप का भय था, रात में बिना रोशनी के वे सो नहीं पाते थे। यहाँ तक कि आत्म स्वीकृति की है कि मैं वास्तव में डरपोक था, है ना। लेकिन आत्मा की शाश्वतता के पाठ ने उन्हें इतना निर्भय बना दिया कि सत्य और अहिंसा के आत्मिक शस्त्र से उन्होंने 40 करोड़ भारतवासियों को अंग्रेजों की परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कर दिया, और उस मुक्ति से अन्य देश भी मुक्त हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं उनके अनुसार स्वयं को आत्मा समझना यह सबसे उत्तम ज्ञान है, और स्वयं को केवल शरीर समझना यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है।
एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर संयुक्त गांधी। महात्मा गांधी जी एक असाधारण व्यक्ति रहे, फिर भी उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार को बढ़ावा दिया है, आपकी राय क्या है?
जरूर, सादगी को उन्होंने बहुत महत्व दिया। हम देखते हैं कि इतनी सच्चाई थी उनमें आंतरिक। हम देखते हैं कि उनके व्यक्तित्व में जो आंतरिक सादगी थी वो बाह्य रूप में भी झलकती है। भगवद गीता के 17वें अध्याय में सात्विक, राजसिक और तामसिक अन्न को स्पष्ट करते हैं। इसलिए हम सभी जानते हैं कि गांधी जी सात्विक अन्न का सेवन करते थे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मतलब प्रयोग करते थे, पालन करते थे, और इस प्रकार पवित्रता, सरलता, अहिंसा द्वारा शरीर संबंधी तप को जीवन में प्रश्रयता दी ना? और हम देखते हैं कि आधुनिक परिवेश में भी जो भी उनकी सीख है वो प्रासंगिक है। अभी भी हम इस प्रकार से सत्य के प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही हम जीवन में सफल होंगे।
तो प्रिय श्रोताओ, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि आज आप डॉक्टर संयुक्ता भवन जी को सुन रहे थे, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता और महात्मा गांधी विरचित सत्य का प्रयोग पर आधारित विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। ये कार्यक्रम अब तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी विमल जी को हम धन्यवाद देते हैं और साथ में आप डॉक्टर संयुक्ता जी को भी धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।
नमस्कार।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।